अध्याय चार, परमेश्वर के पवित्र सब्बत का पालन। सब्बत के पालन करने में बड़ी आशीषें निहित हैं और परमेश्वर की इच्छा है कि सब्बत का दिन हमारे लिए खुशी का दिन हो। जब सब्बत का स्थापन हुआ था तो बड़ी खुशी मनाई गई। परमेश्वर ने संतुष्ट होकर अपने हाथ की कारीगरी को देखा। जितनी चीजें उसने बनाई थीं उनको उसने बहुत ही अच्छा कहा। उत्पत्ति 1:31। स्वर्ग और पृथ्वी आनंद से भर गए, जबकि भोर के तारे एक साथ आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अय्यूब 38:7। यद्यपि पाप ने संसार में दाखिल होकर परमेश्वर के कार्य को नष्ट करना चाहा, फिर भी परमेश्वर ने हमको सब्बत का दिन साक्षी के रूप में दिया है कि वो जो सर्वशक्तिमान है और जिसकी भलाई व दया अथाह है, उसी ने सारी सृष्टि की रचना की। सब्बत के प्रतिपालक द्वारा हमारा स्वर्गीय पिता मनुष्यों के बीच अपना ज्ञान सुरक्षित रखना चाहता है। वो चाहता है कि सब्बत के द्वारा हमारे ख्याल उस सच्चे और जीवित परमेश्वर की ओर फेरे जाएं और उसको जानने से हमें जीवन तथा शांति प्राप्त हो।
जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया और उन्हें अपनी व्यवस्था देकर सिखलाया कि सब्बत ही के मानने से उनमें और मूर्ति पूजकों में पहचान होगी, इसी बात की वजह से परमेश्वर की प्रभुता स्वीकार करने वालों में और उसके सृष्टिकर्ता और सम्राट होने का इनकार करने वालों में अंतर पाया जाता है। वो मेरे और इसराइलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। सो इसराइलियों, विश्राम दिन को माना करें, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करें। निर्गमन 31:16-17। जिस तरह मिस्र से निकलकर पार्थिव कनान में प्रवेश करने के समय सब्बत इसराइलियों के परिचय देने का चिन्ह थी, उसी तरह अब भी परमेश्वर के लोगों की पहचान का चिन्ह है जो इस संसार से निकलकर स्वर्गीय विश्राम में प्रवेश करते हैं। सब्बत का दिन परमेश्वर और उसके लोगों के बीच के नाते का एक चिन्ह है, जिससे प्रकट होता है कि वे उसकी व्यवस्था का आदर करते हैं। ये उसकी विश्वास योग्य प्रजा को अनाज्ञाकारियों से पृथक करता है। मेघ के स्तंभ में से मसीह ने सब्बत के विषय में घोषित किया, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। निर्गमन 31:13।
जिस प्रकार सब्बत दिन परमेश्वर के चिन्ह स्वरूप जगत को दिया गया, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता उसका चिन्ह जो पवित्र करता है। जिस शक्ति ने सब वस्तुओं की सृष्टि की, वह शक्ति परमेश्वर की प्रतिमूर्ति के स्वरूप हमें पुनः सृष्टि करता है। जितने सब्बत को पवित्र रखते हैं उनके लिए ये पवित्रता का चिन्ह स्वरूप है। सच्ची पवित्रता का अर्थ है उसकी अनुरूपता में आना, चरित्र में उसके समान हो जाना। ऐसी स्थिति में हम उसी समय पहुंचते हैं जब हम उसके सिद्धांतों को ग्रहण कर पालन करते हैं जो उसके चरित्र की प्रतिलिपि है। और सब्बत आज्ञा पालन का चिन्ह है जो हृदय से चौथी आज्ञा का पालन करता है। वो सारी व्यवस्था का भी पालन करेगा। आज्ञा पालन के द्वारा ही वो पवित्र ठहरता है। इसराइलियों की तरह हमको भी सब्बत सदा की वाचा के रूप में दिया गया है। जो उसके पवित्र दिन का आदर करते हैं उनके लिए सब्बत एक चिन्ह है कि परमेश्वर उनको अपने चुने हुए लोग समझता है। ये एक वायदा है कि परमेश्वर अपनी वाचा को उनके लिए पूरा करेगा। प्रत्येक प्राणी जो परमेश्वर के शासन के चिन्ह को स्वीकार करता है, अपने आप को ईश्वरीय तथा सदा की वाचा के अधीन करता है। वो अपने को आज्ञा पालन की सुनहरी जंजीर से जोड़ देता है, जिसकी प्रत्येक कड़ी स्वयं एक वाचा है। सब्बत के दिन को स्मरण रखना।
चौथी आज्ञा के आरंभ ही में परमेश्वर ने कहा, स्मरण रख। जानता था कि अनगिनत चिंताओं तथा व्याकुलताओं के बीच मनुष्य व्यवस्था की पूरी मांगों को पालन न करने से प्रलोभन में पड़ जाएगा अथवा उसके पवित्र महत्व को भूल जाएगा। इसीलिए उसने कहा, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। निर्गमन 20:8। सप्ताह भर हमें सब्बत के दिन को स्मरण रखना चाहिए और उसकी आज्ञा के अनुसार मानने के लिए तैयारी करते रहना चाहिए। हम सब्बत को केवल कानूनी बात समझकर न माने, हमें समझना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक प्रभाव जीवन के सारे कारोबार पर पड़ता है। जो सब्बत को अपने और परमेश्वर के बीच एक चिन्ह समझते हैं कि वो पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वे उसके राज्य के सिद्धांतों को प्रकट करेंगे। ये उसके राज्य के नियमों को दैनिक व्यवहार में लाएंगे। प्रतिदिन वे मसीह की संगत में रहेंगे और उसके चाल चलन की भरपूरी का नमूना उपयोग में लाएंगे। प्रतिदिन उनके भले काम दूसरों पर चमकेंगे।
परमेश्वर के कार्य की सफलता में प्रथम विजय घरेलू जीवन में प्राप्त होनी चाहिए। सब्बत की तैयारी का आरंभ यही होना चाहिए। सप्ताह भर माता पिता को स्मरण रखना चाहिए कि उनका घर एक पाठशाला है, जहां उनके बालक उन स्वर्गीय राजमहलों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। उनके वचन यथोचित होने चाहिए। माता पिता के मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जिन्हें बच्चों को सुनना उचित नहीं है। उनके स्वभाव में चिड़चिड़ेपन का नाम नहीं होना चाहिए। माता पिता, आपको सप्ताह में ऐसा जीवन रखना चाहिए मानो कि आप उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हो जिसने आपको ये बालक शिक्षण के हेतु दिए हैं। उसके लिए उस छोटी मंडली का शिक्षण करिए जो आपके घर में है, जिससे सब के सब परमेश्वर के मंदिर में आराधना निमित्त तैयार हो सकें। उसके लोहू द्वारा मोल ली हुई मीरास को प्रातः और साय दोनों समय उपस्थित करिए। उनको शिक्षा दीजिए कि ये उनका अत्युत्तम तथा सौभाग्य है कि परमेश्वर से प्रेम करें और उसकी सेवा करें। जब सब्बत इस प्रकार स्मरण किया जाएगा तो सांसारिक बातें आध्यात्मिक बातों पर प्रभावित न होने दी जाएंगी। 6 दिनों के भीतर जो काम संपूर्ण होने चाहिए वे सब्बत के लिए न छोड़ दिए जाएंगे। सप्ताह में हमारी शक्तियां सांसारिक कार्य से ऐसी थकित न होनी चाहिए कि जिस दिन परमेश्वर ने स्वयं विश्राम किया और ताग्या दम हुआ, उस दिन हम ऐसे थके प्रतीत हों कि उसकी आराधना में भाग न ले सकें।
निस्संदेह सब्बत के लिए हफ्ते भर तैयारी करनी चाहिए, फिर भी शुक्रवार विशेष तैयारी का दिन है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा, कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा, इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। लोग इधर उधर जाकर उसे मान बटोरने और चक्की में पीसने या ओखली में कूटते थे, फिर तसले में पकाते और उसके फुलके बनाते थे। निर्गमन 16 आयत 23, गिनती 11 आयत 8। स्वर्ग से दी हुई रोटी से इसराइलियों को कुछ तैयार करना था। परमेश्वर ने कहा था कि ये सारा काम शुक्रवार तैयारी के दिन होना चाहिए। शुक्रवार को सब्बत की सारी तैयारी समाप्त हो जानी चाहिए। देखो कि सारे कपड़े तैयार हैं और पकाने की सारी वस्तुएं समाप्त हो चुकी हैं। जूतियों की पालिश और स्नानादि सब कार्य हो चुके हों। ऐसा करना संभव है। यदि आप ऐसा नियम बना लें तो ये हो सकता है। सब्बत का दिन कपड़ों की मरम्मत तथा खाना पकाने में, भोग विलास में अथवा किसी सांसारिक कार्य में व्यतीत नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले सारे दुनियादारी का कार्य एक ओर सांसारिक समाचार पत्र दृष्टि से दूर कर देने चाहिए। हे माता पिताओं, अपने कार्य और उनका अभिप्राय बालकों को समझाओ और उन्हें आपकी आज्ञानुसार सब्बत मानने की तैयारी में भाग ले लेने दो।
हमको सब्बत के किनारों की बड़ी उत्सुकता से रक्षा करनी चाहिए। याद रखिए कि प्रत्येक क्षण पवित्र समय है। जहां संभव है, मालिकों को अपने कर्मचारियों को शुक्रवार के दोपहर से सब्बत के आरंभ तक छुट्टी देनी चाहिए। उनको भी तैयारी के लिए समय मिलना आवश्यक है कि वे प्रभु के दिन का हृदय की खामोशी के साथ स्वागत करें। इस प्रकार करने से सांसारिक मामलों में भी आपको कोई हानि न होगी। एक और भी काम है जिसे तैयारी के दिन ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन में परिवार तथा मंडली में बंधुओं के बीच जो मतभेद हो उसको दूर कर देना चाहिए। मन से ईर्ष्या, क्रोध तथा डाह निकाल देना चाहिए। कोमल हृदय से एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। याकूब 5 आयत 16।
सब्बत के दिन कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए अथवा करनी चाहिए जिससे स्वर्ग की दृष्टि पवित्र सब्बत की आज्ञा का उल्लंघन होता है। परमेश्वर हमसे यही नहीं तलब करता है कि हम सब्बत के दिन शारीरिक कार्य से ही बाज रहें, अपितु हमारे मन की ऐसी व्यवस्था हो कि वह पवित्र विषयों पर लगा रहे। चौथी आज्ञा का वास्तविक रूप में उल्लंघन किया जाता है जब हम सांसारिक विषयों पर अथवा हल्की व व्यर्थ बातों पर बातचीत करते हैं। हर विषय पर जो मन में आ जाए, बात करना अपनी ही बातें बोलने के बराबर है। सत्य से फिर जाना हमें दासत्व और दंड आज्ञा में ले आता है। सूर्यास्त की उपासना। तथा कथित इकरारी सब्बत मानने वालों की ओर से जितनी पवित्रता सब्बत को दी जाती है, उससे कहीं अधिक उसमें शामिल है। वे लोग परमेश्वर का अत्यधिक निरादर करते हैं जो सब्बत को आज्ञा के अनुसार नहीं मानते। न तो अक्षरशः और न आत्मा में सब्बत के पालन करने में परमेश्वर सुधार की मांग करता है। सूर्यास्त से पूर्व परिवार के सदस्यों को परमेश्वर का वचन पढ़ने, भजन गाने तथा प्रार्थना करने को एकत्र होना चाहिए। यहीं पर सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि अनेकों ने यहीं पर भूल की है। हमें परमेश्वर के सामने और एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। हम नए सिरे से विशेष प्रबंध करें कि परिवार का प्रत्येक मेंबर उस दिन का आदर करने को तैयार रहें जिसको परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया और पवित्र ठहराया। पारिवारिक उपासना में बालकों को भी भाग लेने दें। प्रत्येक को बाइबल लेकर एक या दो पद पढ़ने दिया जाए, फिर कोई गीत गाया जाए जिसको सब जानते हैं, और उसके बाद प्रार्थना की जाए। इसके लिए मसीह ने एक नमूना दिया है। प्रभु की प्रार्थना केवल रीति के अनुसार दोहराने के लिए नहीं दी गई थी, परंतु नमूने के लिए दी गई थी कि हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार होनी चाहिए, अर्थात साधारण, जोशीले तथा बहुग्राही होनी चाहिए। साधारण निवेदन द्वारा अपनी आवश्यकताओं का वर्णन करो और उसकी कृपाओं के लिए धन्य मानो। यों आप यीशु को अपने घर तथा हृदय में मेहमान स्वरूप नेवता देते हैं। परिवार में दूरवर्ती पदार्थों के लिए प्रार्थना करना उचित नहीं। वे प्रार्थना के समय को थकावट का समय बना डालते हैं, जबकि उसे आशीर्वाद तथा सौभाग्य का समय समझना चाहिए। इस समय को दिलचस्पी तथा खुशी का मौका बनाइए। जब सूर्य डूबता है तो स्तुति का गीत तथा प्रार्थना की आवाज घड़ियों को समाप्त करें, और मेहनत के सप्ताह भर की समस्याओं के निवारण के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। सब्बत को परमेश्वर के लिए पवित्र मानने में अनंत मुक्ति है। परमेश्वर कहता है, जो मेरा आदर करें मैं उनका आदर करूंगा। 1 शमूएल 2:30। परिवार में पवित्रतम घंटे। सब्बत स्कूल तथा आराधना की सभा में सब्बत को एक अंश व्यतीत होता है। शेष भाग भी सब्बत के संपूर्ण घंटों में सबसे पवित्र तथा मूल्यवान बनाए जा सकते हैं। इस समय का अधिकांश भाग माता पिता को अपने बच्चों के साथ व्यतीत करना चाहिए। अनेक परिवारों में बच्चों को अपने मन बहलाव की सामग्री आप ही ढूंढनी पड़ती है। बालकों को अकेले छोड़ देने से वे व्याकुल हो जाते हैं और किसी न किसी प्रकार की शरारत में फंस जाते हैं। इस प्रकार सब्बत उनके लिए विशेष पवित्रता का कारण नहीं रहता। अच्छे मौसम में माता पिता को अपने बालकों के साथ खेतों अथवा बागों में टहलने जाना चाहिए। प्रकृति की सुंदर वस्तुओं के बीच उनसे सब्बत के स्थापन होने के कारण बतलाइए। उनको सृष्टि रचना के महान कार्य के विषय में वर्णन कीजिए। उनको बतलाइए कि जब पृथ्वी परमेश्वर के हाथ से निकली तो वो पवित्र तथा सुंदर थी। प्रत्येक फूल, झाड़ी व वृक्ष सृष्टिकर्ता के प्रयोजन का उत्तर था। जिस किसी पदार्थ पर दृष्टि पड़ी वो शोभायमान दिखाई देता और हृदय को परमेश्वर के प्यार से भर देता था। प्रत्येक स्वर मानो परमेश्वर की आवाज के साथ मिलकर एक राग बन जाता था। उनको बतलाइए कि पाप की वजह से परमेश्वर का मनोहर कार्य बिगड़ गया और कांटे और ऊंट कटारे, शोक, दर्द तथा मृत्यु परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के परिणाम हैं। उनको दिखलाइए कि यद्यपि पृथ्वी पाप के श्राप से बिगड़ गई, फिर भी परमेश्वर के प्यार को प्रकट करती है। हरे हरे खेत, ऊंचे वृक्ष, सुंदर धूप, मेघ, ओस, रात्रि की गंभीर खामोशी, आकाश में तारों का तेज तथा चंद्रमा का सौंदर्य, ये सब सृजनहार की साक्षी देते हैं। मेह की बूंदे, कृतघ्न संसार के ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों, परमेश्वर के प्रेम तथा सहनशीलता की साक्षी देती हैं। उनसे मुक्ति मार्ग का वर्णन कीजिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16।
बैतलहम की मधुर कहानी फिर से बतलाई जाए बालकों के सामने। यीशु, बालक का वर्णन कीजिए कि वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा। यीशु, युवक का वर्णन कीजिए कि वो विश्वास योग्य तथा परिश्रमी था और अपने परिवार के पालन पोषण में सहायता करता था। इस प्रकार आप उनको सिखला सकते हैं कि त्राणकर्ता युवकों को परीक्षाएं, कठिनाइयां, संकट, आशा व खुशियों से भली भांति परिचित है और वो उनकी सहानुभूति व सहायता कर सकता है। समय समय पर बाइबल के इतिहास से मनोरंजक कहानियों को पढ़कर सुनाइए। उनसे प्रश्न कीजिए कि सब्बत स्कूल में उन्होंने क्या क्या सीखा और अगले सब्बत का पाठ उनके साथ पढ़िए। सब्बत के दिन समस्त परिवार को अपने को परमेश्वर को समर्पण करना चाहिए। आज्ञा में वे सब सम्मिलित हैं जो हमारे फाटकों के अंदर हैं। घर के अंदर रहने वाले सब के सब अपने सांसारिक कार्य को अलग करें और पवित्र घड़ियों को भक्ति में लगावें। सब के सब परमेश्वर के पवित्र दिन में सहर्ष सेवा के साथ उसका आदर करने संगठित हो गए। ओह, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। मसीह ने कहा, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मत्ती 18:20। जहां कहीं दो या तीन विश्वासी हैं वे सब्बत के दिन इकट्ठा होकर परमेश्वर के वायदे को तलब कर सकते हैं।
छोटे छोटे समूहों को जो परमेश्वर की उपासना के लिए उसके पवित्र दिन में जमा हुए हैं, अधिकार है कि वे यहोवा से उत्तम आशीष को तलब कर सकते हैं। उनको यकीन होना चाहिए कि उनकी सभा में प्रभु येशु प्रतिष्ठित पाहुन है। प्रत्येक सच्चे आराधक को जो सब्बत को पवित्र मानता है इस प्रतिज्ञा को तलब करना चाहिए, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। निर्गमन 31:13। सब्बत का दिन मनुष्य के लिए बना है कि उसके लिए आशीषप्रद हो। जब वो अपना ध्यान सांसारिक परिश्रम से उठाकर परमेश्वर की भलाई और महिमा पर लगावे, ये आवश्यक है कि परमेश्वर के लोग एकत्र होकर उसके विषय में वार्तालाप करें और उसके वचन में दी हुई सच्चाइयों के विषय विमर्श करें और थोड़ा समय यथोचित प्रार्थना में व्यतीत करें। परंतु सब्बत के दिन पर भी ये अवसर अधिक समय लगा देने और दिलचस्पी से खाली होने से थकाऊ नहीं बनना चाहिए। जब कलीसिया में कोई अध्यक्ष न हो तो किसी को सभा का नेता नियुक्त करना चाहिए, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो उपदेश देवें अथवा उपासना में अधिक समय व्यतीत करें। उपदेश की अपेक्षा एक छोटा सा बाइबल रीडिंग, बाइबल के पदों को पढ़वाकर टीका टिप्पणी कर समझाना प्रायः अधिक लाभदायक होगा। इसके पश्चात प्रार्थना की तथा साक्षी देने की सभा की जा सकती है।
प्रत्येक को महसूस करना चाहिए कि सब्बत दिन की मीटिंग को दिलचस्पी बनाने में उनका भी हिस्सा है। आपको दस्तूर ही के अनुसार जमा होना नहीं चाहिए, किंतु विचार विमर्श, अपने दैनिक अनुभवों का वर्णन करने, धन्यवाद देने, ईश्वरीय प्रकाश के हेतु अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए भी जमा हों, ताकि आप परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे उसने भेजा है, जान लें। मसीह के संबंध में आपस में बातचीत करने से आत्मा को जीवन के संकटों तथा संघर्षों के लिए बल प्राप्त होगा। ये कभी ना ख्याल करें कि आप मसीही होकर एकांत में रह सकते हैं। प्रत्येक मानव जाति का एक अंग है और एक का अनुभव उसके साथी के अनुभव से प्रमाणित होता है। सब्बत स्कूल। सब्बत स्कूल का लक्ष्य आत्माओं को बचाने का होना चाहिए। हो सकता है कि कार्य प्रबंध निर्दोष हों, सुविधाएं ऐसी हों जैसी इच्छा की जा सके, परंतु यदि बालक और युवक मसीह के पास नहीं लाए जाते हैं तो स्कूल असफल हैं, क्योंकि जब तक आत्माएं मसीह की ओर नहीं खिंचतीं तो उन पर दिखावटी धर्म के प्रभावाधीन कोई असर नहीं होता।
शिक्षक को चाहिए कि जब वह उनके हृदय पर जो सहायता चाहते हैं खटखटाता है तो उनके संग सहयोग दे। यदि विद्यार्थी पवित्र आत्मा की अनुपमता को सुने और उत्तर देवे और हृदय के द्वार को खोले ताकि यीशु अंदर आए, तो वह उनकी समझ को खोलेगा ताकि वे ईश्वरीय बातों को समझ सकें। शिक्षक का कार्य साधारण है, परंतु यदि वह यीशु की आत्मा में किया जाए तो परमेश्वर की आत्मा द्वारा उसमें गहरे भावों तथा कार्य क्षमता की वृद्धि होगी।
हे माता पिताओं, अपने बालकों के संग सब्बत स्कूल का पाठ सीखने की इच्छा से प्रतिदिन थोड़ा समय नियत कीजिए। यदि आवश्यकता हो तो सामाजिक भेंट मुलाकातों को छोड़ दें और उस घंटे को, जो पवित्र इतिहास की कीमती पाठों को सीखने का है, कुर्बान न करें। इस अध्ययन से माँ बाप तथा बालकों का लाभ होगा। अति महत्व रखने वाले वाक्य जो उस पाठ से संबंधित है मुखाग्र कर लेना चाहिए, आवश्यकीय बात के रूप में नहीं, किंतु एक सुअवसर समझकर। यद्यपि आदि में स्मरण शक्ति दूषित हो, परंतु अभ्यास से उसको बल प्राप्त होगा, ऐसा कि कुछ समय पश्चात आपको सत्य के कीमती शब्दों को इकट्ठा करने में आनंद आएगा और ये आदत धार्मिक वृद्धि में मूल्यवान सहायता सिद्ध होगी। अपने परिवारों में शास्त्रावलोकन का नियम बांधिए। सांसारिक प्रकृति की कोई भी वस्तु हो उसको त्याग दीजिए। अनावश्यकीय सिलाई और खाने की मेज के लिए अनावश्यकीय पदार्थों को छोड़ दीजिए, परंतु निश्चय कर लीजिए कि जीवन की रोटी से आत्मा संतुष्ट हो रही है। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में एक या आधा घंटा जो खुशी के साथ व्यतीत किया जाता है, उसके सुपरिणाम का अंदाजा लगाना असंभव है। बाइबल ही स्वयं अपनी व्याख्या करे, अर्थात किसी दिए विषय पर भिन्न भिन्न समय पर अथवा विभिन्न हालत के अधीन जो कुछ विवरण हुआ है उसको एकत्र करे। अपने घर में हो रहे क्लास को मुलाकातियों के आगमन पर तोड़ न डालिए। यदि वे शास्त्राभ्यास के समय उपस्थित होवे तो उनको भी भाग लेने का निमंत्रण दीजिए। यह प्रत्यक्ष किया जाए कि आप दुनिया के लाभ व आनंद की अपेक्षा परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त करना अधिक मूल्यवान समझते हैं।
कुछ सब्बत स्कूलों में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, पाठ बजाय सिखलाने के पढ़ा जाता है। ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो समय व्यर्थ रूप में लापरवाही से व्यतीत किया जाता है वो शास्त्राभ्यास में लगाया जाए। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों द्वारा सब्बत स्कूल के पाठों को सरकारी स्कूलों के पाठों की अपेक्षा सरसरी तौर पर पढ़ने का कोई कारण नहीं है। उनको तो और भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे ऐसे विषयों का वर्णन करते हैं जो अपरिमित महत्व रखते हैं। इस विषय में लापरवाही परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली है। जो सब्बत स्कूल का पाठ पढ़ाते हैं, उनका हृदय परमेश्वर के सत्य से उत्साही तथा बलवंत होना चाहिए। उनको न केवल सुनने वाला किंतु वचन पर चलने वाला भी होना चाहिए। उसी प्रकार उनका मसीह में पोषण होना चाहिए, जिस प्रकार दाखलता में डालियां पोषण होती हैं। स्वर्गीय अनुभव की ओस उन पर पड़नी चाहिए, ताकि उनके हृदय कीमती पौधों की तरह हों, जिनकी कलियां खिलती फैलती और परमेश्वर की वाटिका के फूलों की तरह कृतज्ञता मोहक गंध देती है। शिक्षकों को परमेश्वर के सुवचन का परिश्रमी विद्यार्थी बनना चाहिए और इस तथ्य को प्रकट करना चाहिए कि वे मसीह के स्कूल में दैनिक पाठ सीख रहे हैं और दूसरों को उस प्रकाश को पहुंचाने के योग्य हैं जिसे उन्होंने महान गुरु तथा जगत के प्रकाश से प्राप्त किया था। सब्बत के दिन भलाई करना उचित है।
घर में एवं गिरजे में सेवा की भावना प्रकट करनी चाहिए। जिसने हमें शारीरिक काम करने के लिए 6 दिन दिए, उसी ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और पवित्र ठहराकर अपने लिए अलग किया। इस दिन में वही विशेष रूप में सबों को, जो अपने आप को उसकी सेवा के लिए समर्पण करते हैं, आशीष देगा। समस्त स्वर्ग सब्बत को मानता है, परंतु बेपरवाही व व्यर्थ तरीके से नहीं। इस दिन में आत्मा की प्रत्येक शक्ति जागृत होनी चाहिए, क्योंकि क्या हम परमेश्वर और अपने सृष्टिकर्ता मसीह से मुलाकात करने वाले नहीं हैं? हम उसको विश्वास द्वारा देख सकते हैं। वह प्रत्येक को ताजगी देने तथा आशीष देने के लिए इच्छुक है।
दयालु ईश्वर ने पथ दर्शन किया है कि रोगियों तथा दुखियों की देखरेख होनी चाहिए। उनको आराम देने में जो शारीरिक परिश्रम किया जाए ये तो जरूरी कार्य है और इससे सब्बत नहीं टूटता। सारे अनावश्यक काम छोड़ देने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई काम जो लापरवाही से सब्बत के शुरू होने तक छोड़ दिया गया है उसको सब्बत के समाप्त होने तक हाथ नहीं लगाना चाहिए। जबकि सब्बत के दिन खाना पकाने से दूर रहना चाहिए, जरूरी नहीं कि ठंडा खाना खाया जाए। सर्दी के दिनों में भोजन जो पकाया गया है गर्म कर लेना उचित है। भोजन सादा ही क्यों ना हो, मजेदार तथा लुभाने वाला होना चाहिए। खीर, हलवा, फल, दही आदि ऐसे भोजन का प्रबंध होना चाहिए जो जेवनार जैसा समझा जावे। ऐसा भोजन जिसे परिवार प्रतिदिन नहीं खाता,
यदि हम आज्ञाकारियों को वायदा की गई आशीषों की इच्छा रखें तो हमें सब्बत को और कड़ाई से मानना चाहिए। मुझे डर है कि अक्सर हम इस दिन में सफर करते हैं जबकि हम रुक सकते हैं। उस प्रकाश के अनुसार जो मुझे परमेश्वर की ओर से सब्बत के मानने के संबंध में दिया गया, हमें इस दिन में नाव अथवा रेलगाड़ियां, कारों से यात्रा करने में परहेज करना चाहिए। इन मामलों में हमें अपने बालकों तथा युवकों के सामने उचित नमूना रखना चाहिए। उन कलीसियाओं में पहुंचने के लिए जिन्हें हमारी सहायता की जरूरत है और उनको वो संदेश दें जिसे परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। हो सकता है कि हमें सब्बत के दिन यात्रा करनी पड़े, परंतु जहां तक संभव हो सके हमें सारे प्रबंध, टिकट मोल लेने आदि का पहले कर लेना चाहिए। जब यात्रा करनी हो तो सारी मुमकिन कोशिश से प्रबंध करें कि मंजिल पर सब्बत के दिन पहुंचना न हो। जब सब्बत को यात्रा करनी ही पड़े तो ऐसे लोगों की संगति से बचे रहना जो हमारे ध्यान को दुनियावी चीजों की ओर आकर्षित करें। हमें अपने ख्याल को परमेश्वर पर लगाए रखें और उसी से बातचीत करें। जब कभी मौका मिले हमें दूसरों से सच्चाई के विषय में बातचीत करनी चाहिए। हमें सदा तैयार रहना चाहिए कि दुखियों का दुख दूर करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। ऐसी दशा में परमेश्वर चाहता है कि जो ज्ञान व बुद्धि उसने हमें दी है उसका प्रयोग करें। परंतु हमें कारोबार के विषय में बात नहीं करनी चाहिए या किसी आम सांसारिक बातचीत में संलग्न नहीं होना चाहिए। हर वक्त और हर जगह परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी नमक हलाली का सब्बत के आदर करने द्वारा प्रमाण दें।
सब्बत के दिन स्कूल जाना। जो कोई चौथे हुक्म को मानता है उसे मालूम होगा कि उसके और दुनिया के बीच एक विभाजित करने वाली लकीर है। सब्बत एक जांच है, मानवी मांग नहीं परंतु परमेश्वर की जांच है। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो नहीं करते हैं उनके बीच यही अंतर दिखलाएगा, और इसी बात पर सत्य और असत्य के बीच अंतिम वाद विवाद का महान संघर्ष उमड़ आएगा। हमारे कुछ लोगों ने अपने बालकों को सब्बत के दिन स्कूलों को भेजा है। वे ऐसा करने को विवश नहीं किए गए, परंतु स्कूल के अधिकारियों ने ऐतराज किया कि बालक जब तक हफ्ते में 6 दिन में स्कूल ना आए तो उनको नहीं ले सकते। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को केवल साधारण शिक्षा ही नहीं दी जाती किंतु उन्हें तरह तरह के काम भी सिखलाए जाते हैं, और यहां इकरारी आज्ञा पालन करने वालों के बालक सब्बत के दिन भेजे जाते हैं। कुछ माता पिताओं ने मसीह के शब्दों का प्रमाण देकर अपने रवैये को सत्य प्रमाणित करने की कोशिश की कि सब्बत के दिन भलाई करना उचित है, परंतु यही तर्क सिद्ध कर सकता है कि लोग सब्बत के दिन परिश्रम कर सकते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों का पेट तो पालना ही है। ऐसा करने से यह दिखलाने की कोई हद नहीं रहती कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित।
हमारे भाइयों को परमेश्वर की मंजूरी की आशा नहीं रखनी चाहिए जब वे अपने बालकों को ऐसी जगह में रखते हैं जहां उनको चौथी आज्ञा का पालन करना असंभव है। उनको अधिकारियों के साथ ऐसे प्रबंध करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे बालकों को 7वें दिन स्कूल में हाजिर होने से छुट्टी मिल जाए। यदि इसमें सफलता ना हो तो उनका कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है कि वे परमेश्वर की मानता किसी भी कीमत पर पालन करें। कुछ लोग कहेंगे कि परमेश्वर अपनी मांगों में इतना सूक्ष्म रूप से ध्यान नहीं रखता कि उनका कर्तव्य नहीं कि सब्बत को नुकसान उठाकर ऐसा कड़ाई से माना जाए अथवा अपने को ऐसे स्थान पर रखें जहां उन्हें देश के कानूनों से संघर्ष करना पड़े।
यही पर तो जांच हो रही है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का आदर करेंगे या मनुष्य की आज्ञाओं का। यही पर आदर करने वालों तथा निरादर करने वालों में फर्क नजर आएगा। यहीं पर हमें अपनी स्वामी भक्ति का प्रमाण देना है। प्रत्येक युग में अपने लोगों के साथ परमेश्वर के बर्ताव का इतिहास बतलाता है कि वो पूरी पूरी आज्ञाकारिता चाहता है।
यदि माता पिता अपने बालकों की दुनियावी तालीम लेने की आज्ञा दें और सब्बत को एक सामान्य दिन बनावें, तब तो परमेश्वर की छाप उन पर नहीं लग सकती। वे संसार के साथ नाश होंगे तो क्या उनका लोह उनके माता पिता पर न लगाया जाएगा? परंतु यदि हम अपने बालकों को विश्वस्तता से परमेश्वर की आज्ञाओं को सिखलावें और उनको माता पिता की अधीनता में रखें, तब विश्वास व प्रार्थना के साथ उनको परमेश्वर के सुपुर्द कर दें, तो वो हमारे प्रयत्नों के साथ साथ काम करेगा, क्योंकि उसने वायदा किया है। और जब उमड़ता हुआ ईश्वरीय कोप मुल्क के ऊपर फैलेगा, तो वे भी हमारे संग परमेश्वर के तंबू के गुप्त स्थान में छिप सकें। सांसारिक कामों से विश्राम लेने का दिन
मरणशील मनुष्य के लिए अपना उल्लू सीधा करने की निमित्त से सर्वशक्तिमान के साथ समझौता करना भारी गुस्ताखी है। सब्बत के दिन कभी कभी सांसारिक कारोबार में उपयोग करना व्यवस्था का इतना निर्दयता से उल्लंघन करना है जितना उसको कतई तौर पर रद्द करना है, क्योंकि इस प्रकार परमेश्वर की आज्ञा को सुविधा की बात बनाई जाती है। सीने पर्वत से ये गर्जन हुआ था, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। अधूरा आज्ञा पालन तथा विभाजित दिलचस्पी को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि जो मुझसे बैर रखता है, पितरों के पापों का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। पड़ोसी को लूटना मामूली बात नहीं है, और जो कोई ऐसा कार्य करने से दोषी ठहरे, उस पर महान कलंक लगता है। तो भी जो कोई अपने भाई को धोखा देगा, वो निर्लज होकर अपने स्वर्गीय पिता के समय की चोरी करता है, जिसे उसने आशीर्वाद देकर विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया है। शब्दों तथा विचारों को बड़ी सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। जो सब्बत के दिन लेन देन के मामलों पर बातचीत करते और योजना बांधते हैं, उनको परमेश्वर ऐसा समझता है मानो वे सचमुच कारोबार में संलग्न हैं। सब्बत को पवित्र रखने के लिए हमें अपने विचारों को सांसारिक विषयों पर केंद्रित नहीं करना चाहिए।
परमेश्वर ने कहा है, और उसका मतलब है कि मनुष्य माने। वो नहीं पूछता कि जब ये तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो तब तुम करना। जीवन व महिमा के प्रभु ने अपनी सुविधा व आराम का ख्याल नहीं किया जब उसने अपना हाई कमांड का दर्जा त्याग कर दुख पुरुष और शोक से जान पहचान रखने वाला बन गया और बदनामी और मृत्यु को स्वीकार किया, ताकि मनुष्य उसकी आज्ञा उल्लंघन के परिणामों से छुटकारा पावे। यीशु मनुष्य को पाप में बचाने के लिए नहीं, किंतु पाप से बचाने के लिए मरा। मनुष्य अपनी ही युक्तियों पर चलने की भूल को त्यागे और मसीह का नमूना पकड़े, अपनी क्रूस उठाकर उसके पीछे हो ले, आत्मत्याग करे और परमेश्वर की आज्ञाओं का किसी भी मूल्य पर पालन करे।
दुनियावी नफे की खातिर परिस्थिति किसी को सब्बत के दिन काम करने को निर्दोष न ठहराएगी। यदि परमेश्वर एक को क्षमा करता है तो वो सबको क्षमा कर सकता है। भाई नन्हे सिंह गरीब आदमी है, अपनी रोटी कमाने के लिए क्यों वो सब्बत के दिन काम नहीं कर सकता, जबकि ऐसा करने से वो अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सकता है। दूसरे भाई लोग और सब के सब क्यों नहीं सब्बत को माने जब सुविधा हो? सीने पर्वत से आवाज आती है, छह दिन तो परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु सातवां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। निर्गमन 20:9-10।
आपकी अवस्था आपको ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करने से क्षमा नहीं करता। इब्राहिम की वृद्धावस्था में भारी परीक्षा हुई, परमेश्वर के वचन उस बूढ़े जन को अनुचित प्रतीत हुए, फिर भी उसकी प्रार्थना पर कोई संदेह नहीं किया न आज्ञा पालन से हिचका। वो ये निवेदन कर सकता था कि मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं और अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो मेरे जीवन का हर्ष है। वो परमेश्वर को याद दिला सकता था
कि ये आज्ञा इस पुत्र के विषय में जो वायदे दिए गए थे उनके विरुद्ध जा रही है, परंतु इब्राहिम की आज्ञाकारिता में कोई चू व चरा नहीं हुई। उसका परमेश्वर पर पक्का व अटल विश्वास था। यीशु के सेवकों को झिड़की देनी चाहिए जो सब्बत को पवित्र मानने को याद रखने में चूकते हैं। उन्हें मेहरबानी और गंभीरता से उनको डांटना चाहिए जो सब्बत का दावा तो करते हैं पर सब्बत के दिन सांसारिक बातचीत में लीन होते हैं। उन्हें पवित्र सब्बत के दिन परमेश्वर की भक्ति को प्रोत्साहन करना चाहिए।
किसी मनुष्य को पवित्र समय को अनुचित रीति से व्यतीत करने को स्वतंत्र नहीं समझना चाहिए। सब्बत मानने वालों को सब्बत का अधिकांश सोने में व्यतीत नहीं करना चाहिए। ये बात परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली है। ऐसा करने से वे परमेश्वर का अपमान करते हैं और अपने नमूने से प्रकट करते हैं कि 6 दिन अधिक कीमती हैं कि उन्हें विश्राम में व्यतीत किया जाए। उनको रुपया पैदा करना चाहिए, चाहे वो नींद खोकर ही प्राप्त हो, जिसे वे पवित्र समय में सोने से पूरा करते हैं। वे अपने को ऐसा है कह के मुक्त मानते हैं कि सब्बत तो इसीलिए दिया गया है कि आराम करें। उपासना में जाने से मैं विश्राम का नुकसान क्यों उठाऊं? मुझे तो विश्राम की जरूरत है। ऐसे लोग पवित्र दिन का अनुचित उपयोग करते हैं। उन्हें उस दिन में, विशेषकर उसको मानने पर, अपने परिवार को दिलचस्पी दिलानी चाहिए। अधिक लोगों या थोड़े के साथ जैसी भी हालत हो, प्रार्थना के घर में इकट्ठा होना चाहिए। उनको अपना समय व शक्ति आध्यात्मिक सभाओं में लगाना चाहिए, ताकि ईश्वरीय प्रभाव जो सब्बत का होता है उनके साथ हफ्ते भर रहे। सप्ताह के समस्त दिनों में भक्ति संबंधी विचारों तथा ख्यालों के लिए ऐसा हितकारी कोई और दिन नहीं है जैसा कि सब्बत का दिन।
अगर लोग सब्बत दिन को सदा पवित्रता के साथ मानते या पालन करते रहते तो आज संसार में न तो मूर्ति पूजक ही होते न नास्तिक। जिस सब्बत का स्थापन अधन में हुआ था वो उतना ही पुराना है जितना संसार है। सृष्टि के आरंभ से जितने कुलपति हुए सबों ने सब्बत का पालन किया था। मिस्र देश में जब इजरायली दासत्व के बंधन में थे तब उनको बेगार कराने और सब्बत को तोड़ने के लिए विवश करते थे। उन्होंने सब्बत दिन को नहीं पालन करने के लिए इतना उन पर दबाव डाला कि अंत में उस दिन की पवित्रता को जो ज्ञान उनके मन में था वो अधिकांश रूप में जाता रहा। जब सिनाई पर्वत पर से व्यवस्था की घोषणा की गई, चौथी आज्ञा का पालन वाक्य घोषित ये था, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। इस वाक्य से ये संकेत मिलता है कि सब्बत उसी दिन स्थापन नहीं हुआ था, बल्कि उसकी उत्पत्ति के लिए हमें सृष्टि की ओर संकेत किया जाता है। परमेश्वर मानव जाति का सृष्टिकर्ता है। इस बात को उनके मन से मिटा देने और बड़े स्मारक चिन्ह को तहस नहस करने के लिए शैतान कटिबद्ध था। उसका ये लक्ष्य था कि यदि मानव जाति अपने सृष्टिकर्ता को किसी भी तरह भूल जाए तो वो दुष्ट की शक्ति का विरोध करने के लिए भी प्रयास न करेगी, और इस प्रकार शैतान को इस बात का निश्चय हो जाएगा कि मानव जाति उसका शिकार बन चुकी है। पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स, पेज 336। सब्बत मानने की आशीचे।
मुझे यह दिखलाया गया कि जितने चौथी आज्ञा को स्वीकार करके विश्राम दिन को मानते हैं उन पर सब्बत के दिन में समस्त स्वर्गीय गुणों की दृष्टि पड़ी रहती है और वे उनकी रक्षा करते हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने अपने हृदयों में भक्तिभाव रखते हुए पवित्र जाना है और जिन्होंने सब्बत की पवित्र घड़ियों को अपनी योग्यता अनुसार उन्नति की है और सब्बत को आनंदमय बनाते हुए परमेश्वर का आदर किया है। उनको स्वर्गदूत प्रकाश और स्वास्थ्य के विशेष वरदान दे रहे थे और उनको विशेष शक्ति भी दी गई। स्वर्ग की मांगों को पूरा पूरा पालन करने से शारीरिक तथा आध्यात्मिक आशीषें प्राप्त होती हैं। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वो आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचा रहता है और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं,
जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते और मेरी वाचा को पालते हैं, उसको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। यशाया 56 आयत 2-6-7। जब तक स्वर्ग और पृथ्वी स्थिर रहेंगे, तब तक सब्बत परमेश्वर की सामर्थ का चिन्ह बना रहेगा। जब एदन फिर पृथ्वी पर लहराएगा, तब परमेश्वर का पवित्र दिन सूर्य के नीचे रहने वाले लोगों के द्वारा मान्य होगा। विश्राम दिन से विश्राम दिन लो महिमामय नई पृथ्वी के सारे प्राणी मेरे सामने दंडवत करने आया करेंगे। यहोवा का यही वचन है।